लीजिए सुनिए एक जापानी कहानी महाविज्ञ। कहानीकार अत्सुशी नाकाजिमा, हिंदी अनुवाद जितेंद्र भाटिया का। यह कहानी नया ज्ञानोदय पत्रिका के जनवरी मार्च 2023 अंक में प्रकाशित हुई है। कहानीकार अत्सुशी नाकाजिमा, जापानी कथाकार जो अपनी अनूठी शैली और आत्मनिरीक्षण से जुड़े विषयों के लिए जाने जाते थे। उनके प्रमुख कार्यों में द मून ओवर द माउंटेन और लाइट विंड एंड ड्रीम्स शामिल हैं, जिनमें से कई जापानी पाठ्य पुस्तकों में प्रकाशित हुए हैं। अपने जीवन के दौरान उन्होंने लगभग 20 रचनाएं लिखीं, जिनमें अधूरी रचनाएं भी शामिल हैं, जो विशिष्ट रूप से शास्त्रीय जापानी कहानियों और अपने स्वयं के जीवन के अनुभवों से प्रेरित हैं। अब सुनिए महाविज्ञ। प्राचीन चीनी शहर हानतान में चाई चांग नाम का एक आदमी रहता था, जिस पर दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर बनने का भूत सवार था। बहुत खोजबीन के बाद उसे इस विद्या के सबसे बड़े गुरु वाईफाई के बारे में पता चला। वाईफाई की तीरंदाजी का यह आलम था कि वह 100 गज के फासले से तीरों से भरा पूरा तरकश एक छोटी सी पत्ती में दाग सकता था। चाई चांग लंबा सफर तय कर दूर दराज में स्थित वाईफाई के गाँव जा पहुँचा और उनका शिष्य बन गया। वाईफाई ने सबसे पहले अपने शागिर्द को आदेश दिया कि वह पलकों का झपकना रोकने का अभ्यास करे। आदेश पाकर चाई चांग घर लौटा और सीधे अपनी पत्नी के हथकरघे के नीचे घुसकर पीठ के बल लेट गया। उसका इरादा था कि अपनी आंखों के सामने वह करघे की ऊपर नीचे होती सुई को पलकें झपकाए बगैर लगातार घूरता जाएगा। पति को अजीबोगरीब मुद्रा में करघे के नीचे घुसा देखकर उसकी पत्नी भौचक्की रह गई। फिर उसने ऐतराज़ किया कि किसी मर्द के, चाहे वह उसका पति ही क्यों न हो, इस तरह विचित्र कोण से लगातार अपनी ओर घूरते चले जाने के बीच वह सूत नहीं काट सकती। लेकिन पति की जिद के आगे उसे आखिरकार हार माननी ही पड़ी। हर रोज चाई चांग नियम से करघे के नीचे घुसकर अपना विचित्र आसन जमाता और घूरने का अभ्यास करता। 2 साल में वह इस स्थिति में पहुंच गया कि उसकी भौं अगर करघे की सुई में फंस जाती तब भी उसकी पलकें नहीं झपकती। आखिरकार एक दिन अपनी साधना के परिणामों से संतुष्ट होकर वह निश्चयात्मक ढंग से करघे के नीचे से बाहर निकला। अब उसका यह हाल था कि कोई पलक पर सीधी चोट करता या फिर मुट्ठी भर धूल उसकी आंखों में डाल दी जाती तब भी उसकी पलकें नहीं झपकती। उसने अपनी पलकों की पेशियों को इस कदर साध लिया था कि सोते समय भी उसकी आंखें बंद नहीं होती थीं। एक दिन जब वह स्थिर भाव से सामने देख रहा था तो एक मकड़ी ने उसकी भौहों के इर्द गिर्द अपना जाल बुन डाला। इस घटना से उसमें आत्मविश्वास जागा कि अब वह अपने गुरु के पास वापस जा सकता है। चाई चांग से उसकी प्रगति का उत्सुकतापूर्ण बखान सुनने के बाद गुरु वाईफाई ने कहा, पलकों को झपकने से रोकना तो सिर्फ पहला पाठ है, अब तुम्हें देखने का अभ्यास करना होगा। चीज़ों को ध्यान से देखने की आदत डालो। जब तुम्हें सूक्ष्मतम भी साफ नज़र आए और जो छोटा है वह विशाल काय लगने लगे तब दोबारा मेरे पास आना। गुरु का आदेश सुनकर चाई चांग फिर से घर लौट आया। इस बार बगीचे में जाकर उसने किसी छोटे कीड़े को तलाशना शुरू किया। जब उसे आखिरकार इतना महीन कीड़ा मिला जिसे नंगी आँख से देखना तक मुश्किल था तो उसने कीड़े को घास की पत्ती पर रखकर अपने कमरे की खिड़की के करीब लटका दिया। फिर कमरे के दूसरे सिरे पर बैठकर उसने घास पर रखे उस कीड़े को दिन रात एक टक घूरना शुरू कर दिया। शुरू में इतनी दूर से एक कीड़ा बमुश्किल ही दिखाई देता था, लेकिन 10 दिन बाद ही उसे लगा कि कीड़ा पहले से कुछ बड़ा हो गया है। 3रे महीने के गुजरते न गुजरते उस कीड़े का आकार न सिर्फ किसी रेशम के कीड़े के जितना मोटा दिखाई देने लगा था बल्कि उसके अंग प्रत्यंग को साफ पहचानना भी अब संभव था। एकाग्र भाव से उस कीड़े की ओर देखने में चाई चांग इस कदर डूबा कि उसे मौसम के बदलने का भी पता नहीं चला। वसंत की गुनगुनी धूप गर्मियों के चिलचिलाती दोपहरियों में बदली। पतझड़ का उजला आकाश दक्षिण की ओर उड़ान भरते पक्षियों से भर गया और देखते ही देखते पतझड़ को पीछे छोड़ सर्दियों का स्लेटी बर्फीली हवाओं वाला मौसम घेर आया। लेकिन चाई चांग की समूची दुनिया घास की पत्ती पर रखे उस कीड़े के गिर्द सिमट गई थी। अगर एक कीड़ा मरता या गायब होता तो उसका नौकर उसके स्थान पर वैसा ही एक और महीन कीड़ा वहां ला रखता। लेकिन फिर भी चाई चांग को अपनी नंगी आँखों बड़े होते दिखाई देने लगे थे। 3 वर्षों तक चाई चांग शायद ही कभी कमरे से बाहर निकला होगा। आखिरकार एक दिन जब उसे महसूस हुआ कि खिड़की के पास लटके उस कीड़े का आकार घोड़े जितना बड़ा हो गया है, तो वह खुशी से चिल्लाया और विजय भाव से जांघें ठोंकते हुए अपने कमरे से निकल आया। लेकिन बाहर सड़क पर पहुंचने के बाद एक बार तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। राह पर चलते घोड़े ने पर्वतों का आकार ले लिया था, सुअर छोटी मोटी पहाड़ियों जैसे दिखाई दे रहे थे और मुर्गियाँ किले की बुर्जों जितनी बड़ी हो गई थीं। खुशी से उछलते हुए वह वापस अपने घर के भीतर भागा और एक पतला शुओपियंग तीर उसने अपने मनपसंद धनुष पर चढ़ा लिया। फिर निशाना साधकर उसने बड़ी आसानी के साथ उस तीर को कीड़े के कलेजे के आर पार कर डाला। लेकिन आश्चर्य यह था कि घास की जिस पत्ती पर कीड़ा बैठा था उसे तीर ने छुआ तक नहीं था। जरा भी वक्त गवाए बगैर चाईचांग ने इस करतब का ब्यौरा अपने गुरु को दिया। गुरु वाईफाई इस बार सचमुच खुश हुआ और उसने पीठ ठोंक कर अपने शिष्य को शाबाशी दी। धनुर्विद्या के रहस्यों से जूझते हुए चाईचांग को अब तक 5 वर्ष होने को आए थे। गुरु की प्रशंसा सुनकर चाईचांग को लगा कि पिछले 5 सालों की कठिन साधना का सिला उसे मिल गया है। तीरंदाजी का कोई भी करिश्मा अब उसकी पहुंच से बाहर नहीं था, लेकिन फिर भी घर लौटने से पहले उसने इस कौशल की कठिनतम परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करने की ठान ली। सबसे पहले उसने वाईफाई की ही तरह धनुष उठाया और 100 गज के फासले से तीरों से भरा पूरा तरकश एक छोटी सी पत्ती को आर पार बींधते हुए खाली कर डाला। फिर कुछ दिनों बाद एक निराले अंदाज में यही करतब उसने दोबारा दोहराया। इस बार तरकश खाली करते वक्त उसके हाथ में सबसे वजनी और बड़ा धनुष था, जबकि दाहिनी कोहनी पर उसने पानी से भरे एक प्याले को संतुलित कर रखा था। कमाल यह था कि तीर पहले की तरह ठीक निशाने पर लगे थे, लेकिन प्याले से एक बूंद भी पानी बाहर नहीं गिरा था। इसके कुछ दिन बाद ही चाईचांग ने पंख जैसे हल्के 100 तीरों को धनुष पर खींचकर एक के बाद एक जल्दी जल्दी किसी सुदूर निशाने की ओर छोड़ा। पहला तीर ठीक निशाने पर जा बैठा, दूसरा तीर पहले तीर को बींधता हुआ ठीक उसकी धुरी पर लगा, तीसरा तीर दूसरे तीर की धुरी पर, और इस तरह देखते देखते सारे तीर एक के पीछे एक निशाने से धनुष तक सीधी रेखा में बींधते चले गए। चाईचांग का निशाना इतना पक्का था कि धनुष के नीचे रख देने के बाद भी तीर जमीन पर गिरने की जगह उसी तरह एक दूसरे से बिधे हवा में कपकपाते रहे। इस लाजवाब करिश्मे को देख रहे गुरु वाईफाई से भी रहा नहीं गया और उसने विभोर होकर तालियों के साथ अपने शिष्य का भरपूर अभिवादन किया। धनुर्विद्या की सारी कठिन परीक्षाओं में सफल होने के बाद चाईचांग जब आखिरकार घर लौटा तो उसकी पत्नी, जो बरसों की इस उपेक्षा से तंग आ चुकी थी, उसे देखते ही जली कटी सुनाने लगी। पत्नी की चखचख पर खीज महसूस करते हुए चाईचांग ने ताव में आकर जल्दी से एक चाईवेई तीर धनुष पर चढ़ाकर प्रत्यंचा को पूरा खींचते हुए पत्नी की आंख के ठीक ऊपर छोड़ा। तीर में इस गजब की तेज थी और निशाना इस कदर पक्का था कि पत्नी की भौं के 3 बाल तीर के साथ निकल आए, लेकिन पत्नी को पता तक नहीं चला और वह उसी तरह गुस्से से पति को गालियां सुनाती रही। चाईचांग के लिए अब धनुर्विद्या में अपने गुरु वाईफाई से कुछ और भी सीखना बाकी नहीं रह गया था। वह अपने जीवन के अंतिम लक्ष्य के बहुत करीब आ पहुंचा था, लेकिन फिर भी एक कमी खटक रही थी। अपने अंतर्मन की गहराइयों को टटोलते हुए चाईचांग ने पाया कि इसकी मंजिल की राह में अब भी एक रोड़ा बाकी रह गया था और वह रोड़ा थे स्वयं उसके गुरु वाईफाई। चाईचांग चाहे जितनी भी तीर मार लेता, पर गुरु वाईफाई के जीते जी कोई भी उसे दुनिया का सबसे बड़ा धनुर्धर मानने के लिए तैयार नहीं हो सकता था। तीरंदाजी में यद्यपि वह अपने गुरु के बराबर दर्जा हासिल कर चुका था, लेकिन फिर भी गुरु से आगे निकलना उसके लिए असंभव था। यानी गुरु का जिंदा रहना भी अब चाईचांग के महान लक्ष्य के लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया था। एक दिन खेतों के बीच से गुजरते हुए चाईचांग ने दूर से अपने गुरु वाईफाई को देखा। गुरु को देखते ही बिना किसी दुविधा में पड़े उसने अपने धनुष पर तीर चढ़ाया और उसे गुरु की दिशा में साध लिया। लेकिन उधर बूढ़े उस्ताद ने भी दूर से ही माजरा भांप लिया था और क्षणांश में ही उसने भी अपने धनुष पर तीर चढ़ा डाला। गुरु चेले दोनों की प्रत्यंचा में एक ही क्षण में तीर छूटे और आधे रास्ते में परस्पर टकरा कर जमीन पर गिर गए। चाईचांग ने तत्काल एक और तीर छोड़ा, लेकिन इसे भी वाईफाई के जवाबी तीर ने रास्ते में ही काट दिया। इस तरह यह विचित्र द्वंद्व तब तक चलता रहा जब तक गुरु का तरकश खाली नहीं हो गया। लेकिन चाईचांग के पास अभी एक तीर बच रहा था, यही मौका है, उसने सोचा, और अंतिम तीर से उसने अपने गुरु को निशाना बना लेना चाहा। लेकिन गुरु वाईफाई ने बिजली की फुर्ती के साथ बगल की कांटेदार झाड़ी से एक टहनी तोड़ी और आखिरी क्षणांश में सीने की ओर सनसनाते तीर की नोक को झाड़ी से एक टहनी पर लगे कांटे की नोक से मोड़कर जमीन पर गिरा डाला। अपने खतरनाक इरादों को विफल होता देख चाईचांग सकपकाया और फिर पश्चाताप और आत्मग्लानि से उसका दिल भर आया। जाहिर है कि उसका एक भी तीर अपने अपेक्षित लक्ष्य तक पहुंच गया होता तो उस समय उसके मन के भाव कुछ और ही होते। उधर दूसरी ओर वाईफाई को अपने बच निकलने पर इतनी राहत और आत्मरक्षा में काम आई अपनी धनुर्विद्या पर इतना गर्व हो रहा था कि उसके मन में अपने संभावित हत्यारे के प्रति गुस्से या विद्वेष का कोई भी भाव आने से रह गया। इसी मन स्थिति में गुरु शिष्य दोनों दौड़े और आसक्ति के आंसू बहाते हुए एक दूसरे के गले लग गए। लेकिन क्षमा भाव से अपने महत्वाकांक्षी शिष्य को गले लगाते हुए भी गुरु वाईफाई अच्छी तरह समझ रहा था कि चाईचांग के जुनून के चलते किसी भी दिन उसकी ज़िंदगी दोबारा खतरे में पड़ सकती है। इस खतरे को टालने के लिए वक्त हाथ में रहते चाईचांग के खपती दिमाग को किसी नए अधिक मुश्किल लक्ष्य की ओर मोड़ देना बेहद ज़रूरी था। देखो वत्स, उसने चाईचांग को अपनी बाहों से अलग करते हुए कहा, जितनी धनुर्विद्या मुझे आती थी मैंने तुम्हें सिखा दी, अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए और कुछ नहीं है। फिर भी अगर तुम इस विद्या के रहस्यों में और गहरे उतरना चाहते हो तो जाओ। ऊंचे तसिंग दर्रे से होकर पश्चिमी प्रदेश में हो पर्वत के शिखर पर जाओ, वहां तुम्हें गुरु पितामह कान यिंग मिलेंगे, जिनसे बड़ा धनुर्विज्ञ न इस युग में कोई हुआ है न कभी आगे होगा। उनके कौशल के मुकाबले हमारी धनुर्विद्या तो जैसे अबोध बच्चों का खेल है। बस अभी एक पितामह कान यिंग ही हैं इस दुनिया में जो तुम्हें तीरंदाजी के इस मुकाम से और आगे ले जा सकते हैं। जाओ उनका पता लगाओ और अगर वे जिंदा हों तो फौरन उनके शिष्य बन जाओ। गुरु की बातें सुनकर चाईचांग फौरन हो पर्वत की ओर रवाना हो गया। अपनी महान उपलब्धियों के बच्चों का खेल बताए जाने से उसके अहम को गहरी ठेस पहुंची थी। साथ ही उसे डर भी महसूस हुआ कि अपनी आखिरी मंजिल से वह कहीं अब भी मीलों दूर न हो। उसने पाया कि जल्दी से जल्दी हो पर्वत के शिखर पर पहुंचकर अपनी तीरंदाजी का मुकाबला उस बूढ़े पितामह की विद्या से करना अब उसके लिए बेहद ज़रूरी हो गया है। तासिंग दर्रे को लांग चाईचांग काफ़ी मुश्किलों का सामना करते हुए उस दुर्गम पहाड़ के ऊपर चढ़ता चला गया। पथरीले रास्तों पर उसके जूते फटकर चिथड़े हो गए, पैरों तथा घुटनों से खून बहने लगा, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। खतरनाक पहाड़ी कगारों और गहरी खाइयों पर टिके पतले तख्तों को पार करता हुआ वह लगभग एक महीने के सफ़र के बाद आखिरकार हो पर्वत के शिखर पर जा पहुँचा। यहाँ पहुँच कर बहुत जल्दी ही उसने वह गुफा ढूंढ निकाली जहाँ कान यिंग रहता था और सीधे भीतर घुस गया। उसने देखा कान यिंग की उम्र पक चुकी थी लेकिन फिर भी उसकी आंखों में किसी मेमने के निरीह नैनों की सी कातरता थी। उसकी कमर झुकी हुई थी और जब वह चलता था तो उसके बर्फीले बाल पीछे पीछे घिसटते चलते थे। वह इतना बूढ़ा था कि उसकी ओर देखते हुए भी घबराहट होती थी। यह सोचकर कि इतना बूढ़ा आदमी ज़रूर बहरा भी होगा, चाईचांग ने ऊँची आवाज़ में कहा, मैं यह फैसला करने यहाँ आया हूँ कि सचमुच क्या मैं उतना ही बड़ा धनुर्धर हूँ जितना अपने आप को समझता हूँ। और कान यिंग के उत्तर का इंतज़ार किए बगैर उसने पीठ पर लदे देवदार की लकड़ी से बने धनुष को हाथ में लेकर ऊंचे उड़ते पक्षियों के एक झुंड को अपने सूचिए तीर का निशाना बना डाला। देखते ही देखते पांच पक्षी उजले नीले आकाश से नीचे की ओर गोता लगाते हुए उससे कुछ ही दूरी पर आ गिरे। बूढ़ा पितामह इसे देखकर उदार भाव से मुस्कुराते हुए बोला, यह तो महज तीर कमान के निशानेबाजी है मित्र, तुमने क्या अभी तक तीर चलाए बगैर निशाना लगाना नहीं सीखा? आओ मेरे साथ आओ। बूढ़े सन्यासी से निसंगता पर खिसियाया चाईचांग चुपचाप उसके पीछे पीछे चलता हुआ गुफा से 100 कदम आगे पहाड़ की कगार तक जा पहुंचा। जहां सामने गहरी खाई में कई हजार गज की दूरी पर चट्टानों पर एक पहाड़ी नदी चांदी की तरह चमचमा रही थी। उस ओर देखते देखते चाई चांग की आंखें धुंधलाने लगीं और फिर चक्कर खाता हुआ सा महसूस हुआ। गुरु पितामह कानयिंग फुर्ती के साथ दौड़कर पहाड़ से बाहर खाई के ऊपर झूलती एक चट्टान पर जा खड़ा हुआ। अब देखें तुम्हारा कौशल, उसने पलटकर चुनौती भरे स्वर में चाई चांग से कहा। मैं जिस जगह पर खड़ा हूं वहां आकर अपनी धनुर्विद्या दिखाओ तो जाने। अपने स्वाभिमान के चलते चाई चांग से इनकार करते नहीं बना और वह कानयिंग के स्थान पर जा खड़ा हुआ। लेकिन जैसे ही उसने आगे कदम रखा तो वह चट्टान धीरे धीरे डगमगाने लगी। भरसक हिम्मत का प्रदर्शन करते हुए चाई चांग ने धनुष हाथ में लिया और कंपकंपाती उंगलियों से उस पर तीर चढ़ाने की कोशिश करने लगा। तभी चट्टान के नीचे से एक पत्थर सरका और लुढ़कता हुआ हजारों फुट नीचे फैले शून्य में गिरता चला गया। अपनी आंखों से उस गिरते पत्थर का अनुसरण करते हुए चाई चांग को लगा कि वह अपना संतुलन खो बैठेगा। घबराहट में लड़खड़ाकर गिरते गिरते उसने पूरी ताकत के साथ चट्टान के सिरे को अपनी उंगलियों में कस लिया। उसकी टांगें कांप रही थीं और उसके शरीर से पसीना छूटने लगा था। बूढ़े पितामह ने जोर का ठहाका लगाया और फिर अपने बढ़े हुए हाथ का सहारा देकर चाई चांग को चट्टान से नीचे उतारा। फिर कूद कर उसी चट्टान पर स्वयं खड़े होते हुए उसने कहा, अब इजाज़त दो तो मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि असली धनुर्विद्या किसे कहते हैं। चाई चांग का चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था और सीने में उसका दिल हथौड़े की तरह बज रहा था, लेकिन इस सब के बावजूद वह गौर किए बगैर नहीं रह सका कि बूढ़े गुरु के दोनों हाथ खाली थे। परंतु आपका धनुष कहाँ है? उसने हकलाहट भरे स्वर में आखिर पूछ ही डाला। मेरा धनुष? बूढ़े ने फिर एक ठहाका लगाया। कहाँ है मेरा धनुष? फिर उसने चाई चांग की ओर देखते हुए कहा, जब तक तुम्हें धनुष और बाण की आवश्यकता पड़ती है तब तक तुम इस कला की तलछट से ऊपर नहीं उठ सकते। असली धनुर्विद्या ना धनुष की मोहताज होती है और ना बाण की। उसके सिर के ठीक ऊपर आसमान में बहुत ऊंचे एक चील उड़ रही थी। सन्यासी ने नजरें उठाकर चील की ओर देखा तो चाई चांग ने गुरु की दृष्टि का अनुसरण किया। चील इतनी ऊंची थी कि उसकी पैनी निगाहों को भी वह किसी तिल के दाने से बड़ी नहीं दिखाई दे रही थी। पितामह कानयिंग ने किसी वायवी धनुष पर एक अदृश्य तीर चढ़ाते हुए प्रत्यंचा को लचीलेपन की सीमा तक पूरा खींच फिर छोड़ दिया। चाई चांग को सरसराहट जैसी ही कोई ध्वनि सुनाई दी। फिर दूसरे ही क्षण उसने देखा कि चील ने पंखों को फड़फड़ाना बंद कर दिया और वह किसी बेजान पत्थर की तरह आसमान से टूटकर नीचे जमीन पर आ गिरी। चाई चांग स्तब्ध रह गया। उसने महसूस किया कि पहली बार वह कला के उस वास्तविक चरमोत्कर्ष को देख पा रहा है जिस तक पहुंच चुकने के दम में वह इतनी दूर चलकर यहाँ आया था। पूरे 9 वर्षों तक चाई चांग पहाड़ों की उन चोटियों पर बूढ़े पितामह के साथ साधना करता रहा। इन 9 वर्षों में उसे किस किस तपस्या से गुजरना पड़ा कोई नहीं जानता। 10वें वर्ष में पहाड़ों से नीचे उतरकर जब वह घर लौटा तो परिवर्तनों की वजह से उसे पहचानना मुश्किल। उसके चेहरे में जिद और अखड़पन के आखिरी अवशेष भी गायब हो चुके थे और इनकी जगह वहाँ एक भावविहीन सादगी और सहजता उभर आई थी। उससे मिलने आए उसके पुराने गुरु वाईफाई ने बस एक ही नज़र उसकी ओर डाली और कहा, वाह, अब तुम सचमुच महाविज्ञ बन चुके हो। मुझ जैसा नाड़ी तो अब तुम्हारे पैरों की धूल छूने के काबिल भी नहीं। हान तान के निवासियों ने चाई चांग को देश के सबसे बड़े धनुर्धर का खिताब देते हुए उसकी जयकार की और फिर काफ़ी उत्साह और अधीरता के साथ वह उसकी धनुर्विद्या के प्रदर्शन का इंतज़ार करने लगे। लेकिन चाई चांग ने उनकी उम्मीदों को पूरा करना तो दूर घर लौटने के बाद धनुष बाण को हाथ तक नहीं लगाया। जिस देवदार के बड़े धनुष को वह साथ लेकर गया था वह भी शायद ऊपर पहाड़ों में ही कहीं छूट गया था। जब किसी ने इस निसंगता का कारण जानना चाहा तो उसने सहज भाव से कहा, सक्रियता की चरम सीमा है निष्क्रियता, बड़बोलेपन की चरम परिणति है खामोशी, और तीरंदाजी की अंतिम पराकाष्ठा है धनुर्धारण से परहेज। हान तान के संवेदनशील नागरिकों ने चाई चांग की बात के मर्म को फौरन पहचाना और श्रद्धा भाव से वे धनुष बाण को छूने तक से इनकार करने वाले उस महान धनुर्धर के सामने नतमस्तक हो गए। तीरंदाजी के त्याग की खबर फैलने के बाद पूरे प्रदेश में उसकी ख्याति लगातार बढ़ने लगी। देश विदेश में अब चाई चांग को लेकर तरह तरह की अफवाहें फैलने लगी थीं। सुना गया कि आधी रात के बाद उसके घर की छत से किसी अदृश्य धनुष के खींचे जाने की आवाज़ें आती हैं। किसी और ने कहा कि यह धनुर्विद्या का देवता है जो सारा दिन चाई चांग के भीतर वास करता है और रात के समय दुरात्माओं से उसकी रक्षा करने के लिए बाहर निकल आता है। चाई चांग के पड़ोस में रहने वाले एक सौदागर ने अफवाह फैलाई कि एक रात उसने बादलों पर सवार चाई चांग को अपने घर के ऊपर से उठकर जाते देखा था। पुरातन युग के ख्याति प्राप्त धनुर्धरों हाउ आई और यांग यूची मुकाबला कर रहा था। सौदागर के अनुसार उन तीनों ने जो तीर छोड़े वे आसमान के दो तारों ओरियन और सीरियस के बीच से नीली रोशनी छोड़ते हुए काले आसमान के अंधेरे में गायब हो गए थे। शहर के एक नामी चोर ने आत्मस्वीकृति में कहा कि एक बार जब चोरी के इरादे से वह चाई चांग के घर में उतरने की कोशिश कर रहा था तो खिड़की से बाहर आते हवा के एक तेज थपेड़े ने अचानक उसके माथे पर इतनी जोर का प्रहार किया कि वह दीवार से नीचे गिर गया। इस घटना के बाद से बुरी नज़र वाले सारे लुच्चे बदमाश चाई चांग के मोहल्ले से दूर ही रहने लगे और सुनते हैं कि आकाश मार्ग से सुदूर प्रदेश की ओर जाने वाले पक्षियों तक ने अपना रास्ता बदल दिया ताकि उन्हें चाई चांग की छत के ऊपर से न गुजरना पड़े। जमीन और आसमान के आखिरी छोर तक फैलती अपनी ख्याति के साथ ही चाई चांग धीरे धीरे बूढ़ा होने लगा। क्रमशः वह उस चरम स्थिति की ओर पहुंचता गया जहां शरीर और आत्मा बाहरी वस्तुओं की ओर देखने की जगह सादगी और सहजता के साथ अंतर्मुखी हो जाते हैं। उसके सौम्य चेहरे से अब अभिव्यंजना के आखिरी अवशेष भी धीरे धीरे मिटने लगे। अब वह शायद ही कभी बोलता और कई बार तो लोगों को शक होता कि वह सांस भी ले रहा है या नहीं। कई बार उसका समूचा जिस्म किसी मुरझाए हुए पेड़ की तरह प्राणहीन नजर आने लगता। प्रकृति के नियमों के साथ वह इस कदर एकात्म हो चुका था कि अपने जीवन के संध्या काल में उसके लिए मैं और वह या इस और उसके बीच अंतर करना भी मुश्किल हो गया था। ऐन्द्रिक अनुभूतियों का इंद्रजाल अब उसके लिए अर्थहीन हो चुका था और उसकी बला से अब आंख की जगह कान होता या नाक की जगह मुंह, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। पहाड़ों से नीचे उतरने के कोई 40 वर्ष बाद चाई चांग एक दिन चुपचाप इस दुनिया से यूं चला गया जैसे धुआं आसमान में विलीन होता है। इन 40 वर्षों के दौरान उसने तीर कमान उठाना तो दूर, कभी तीरंदाजी का नाम तक नहीं लिया। उसके जीवन के अंतिम वर्ष का एक वाकया सुनने में आता है कि एक दिन वह अपने मित्र के घर गया तो वहाँ उसने मेज़ पर एक ऐसे अजीब से उपकरण को रखा पाया जिसे शायद उसने पहले कहीं देखा था लेकिन जिसका नाम या उपयोग उसे याद नहीं आ रहा था। दिमाग पर काफ़ी जोर लगा चुकने के बाद आखिरकार हार कर अपने मित्र से पूछा, दोस्त तुम्हारी मेज़ पर यह जो उपकरण पड़ा है इसे क्या कहते हैं और यह किस काम आता है? उसका मित्र हंस दिया। उसे लगा कि चाई चांग उसके साथ मजाक कर रहा है। जब बूढ़े चाई चांग ने दोबारा प्रश्न दोहराया तो मित्र के चेहरे पर अविश्वास की रेखाएं उभर आईं और उसने बहुत गौर के साथ चाई चांग के चेहरे की ओर देखा। जब उसे पूरा विश्वास हो गया कि ठीक ठीक सुना है और उसका बूढ़ा दोस्त पागलपन या मजाक में उससे सवाल नहीं कर रहा है तो उसने बमुश्किल हकलाते हुए कहा, गुरुदेव आप धन्य हैं, आपसे बड़ा विज्ञ इस धरती पर दूसरा नहीं हो सकता। यह आपकी महानता का चरम उत्कर्ष है कि आप इस धनुष का नाम और इसका उपयोग दोनों भूल चुके हैं। कहते हैं कि इस घटना को सुनने के बाद हानतान के चित्रकारों ने अपनी कुंचियां फेंक दीं, संगीतकारों ने वाद्यों के तार तोड़ डाले और लेखकों को कई दिनों तक अपनी लेखनियों के साथ देखे जाने में शर्मिंदगी का एहसास होता रहा।